मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 20 मई 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल से मैंने इस तथ्य के बारे में बताना शुरू किया है कि किस प्रकार से हमारी चेतना अपने आसपास के परिवेश से प्रभावित होती है और फिर किस तरीके से यदि वह एक बिंदु को बहुत गहरे रूप से पकड़ लेती है तो फिर लगातार उसी बिंदु से संबंधित जो दूसरी बातें होती हैं उनकी ओर या तो वह स्वयं आकर्षित होने लगती है या यूं कह लीजिए कि उन बिंदुओं को वह अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और मैं माफी चाहूंगा कि इसके बारे में मैंने थोड़े से अपने उदाहरण लेने शुरू किए हैं और दोस्तों उसका कारण साफ यह है क्योंकि उसको मैंने जिया है, उसका मैंने विश्लेषण किया है, बहुत गहराई से उसे अनुभव किया है और उसके बाद जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं चूंकि मैं उन्हें आपके सामने रख रहा हूं इसलिए मजबूरन मुझे अपनी ही बात के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करनी पड़ रही है और इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहूंगा। दोस्तों, कल मैंने परिवेश की बात बताई थी। देखिए, जब मैं परिवेश कहता हूं तो आप उसे एक पर्टिकुलर बात तक सीमित मत कीजिएगा, एक पर्टिकुलर दृश्य तक सीमित मत कीजिएगा। जो परिवेश होता है अपने आप में बहुत विशाल होता है। वहां प्रकृति भी होती है, वहां लोग भी होते हैं, वहां परिवार भी होता है, वहां का पूरा पर्यावरण होता है, वहां की कल्चरल एक्टिविटीज किस तरीके की हैं, परंपराएं किस तरीके की हैं, लोग किस तरीके के हैं, उनका व्यवहार किस तरीके का है। मान लीजिए कि कहीं एक छोटी सी दुकान है तो उस दुकान का प्रभाव होगा, स्कूल है तो स्कूल का प्रभाव होगा, अगर वहां कोई शराब की दुकान है तो उसका भी प्रभाव होगा, भले ही वो सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी हो लेकिन प्रभाव होगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों के मिश्रण से ये पूरा परिवेश बनता है। अब आप देखिए कि ये जो परिवेश बन गया इसके बारे में तो आप हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में तो हम अपने परिवेश को बदल सकते हैं लेकिन अब इस बात का फैसला हम सब कैसे करें कि भैया मुझे तो इसी परिवेश में जन्म लेना है, है ना। हम अपने माता पिता का चुनाव नहीं कर सकते चूंकि, तो सीधी सी बात है कि हम परिवेश का चुनाव भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहां आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, और वो ये है कि ठीक है परिवेश अपनी जगह है लेकिन हम परिवेश के पूरी तरह से गुलाम नहीं है। ये हमारे पक्ष में बहुत बड़ी बात है और हमारी बहुत बड़ी ताकत है। परिवेश का प्रभाव हम पर पड़ेगा लेकिन हम उसके गुलाम नहीं है। इस तथ्य को आप हमेशा अपने दिमाग में बना करके रखिएगा, अदरवाइज तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी क्योंकि फिर तो ये लगेगा कि भाई हमको तो समर्पण करना है परिवेश के सामने, अब उसमें हमारा क्या है, जैसा परिवेश था वैसा हम बन गए और जैसे हम बन गए उस तरीके से हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आपकी परिवेश में से यदि कोई बात आपके दिमाग में बैठ जाती है या उस पर आप सोचना शुरू करते हैं, किसी चीज से आप प्रभावित होते हैं तो कैसे फिर वो अपनी ही सजातीय बातों को आकर्षित करने लगती है। यानी कि ऊपरी तौर पर भले आपको यह न लगे कि यह भी उसी जैसा है लेकिन इनफैक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में वह उसी ही जाति का होता है, उसी ही प्रजाति का होता है। उसके जो चारित्रिक गुण होते हैं वो लगभग लगभग कहीं ना कहीं उसी तरीके के होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए फिर से मैं कुछ उदाहरणों के जरिए अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, हमारे गांव में लाल साहब भी थे और मेरे दादाजी भी थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे दादाजी को लाल साहब बुलाते रहते थे और काफी सम्मान भी देते थे और इन दोनों का गांव और गांव के आसपास के क्षेत्रों में काफी सम्मान था लेकिन दोनों के सम्मान में बहुत फर्क था। मेरे दादाजी बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, बहुत ही सामान्य किस्म के व्यापारी थे, उनकी दुकान थी लेकिन वो बहुत दयालु हृदय के थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, लोगों की मदद करना इस तरह के व्यक्ति थे। इसके कारण लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। और जो हमारे लाल साहब थे वो तो बड़े रुतबे वाले थे, है ना, प्रभावशाली थे, उनका दबदबा था क्योंकि उनके पास अधिकार थे। तो अब इनका जो सम्मान था लाल साहब का, स्वाभाविक है कि मेरे दादाजी की तुलना में कई गुना ज्यादा था लेकिन इनके पास जो सम्मान था वो अधिकार का सम्मान था और मेरे दादाजी के पास जो सम्मान था वो व्यवहार का सम्मान था। लेकिन अगर दोनों में तुलना करें तो डेफिनेटली फिर 80% जो सम्मान था वो लाल साहब का था और 20% सम्मान दादाजी का था। ये प्रतिशत की बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब मैं उसका विश्लेषण कर सकता हूं। तब फिर मैं सोचता था कि भाई दादाजी हमारे इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने दयालु हैं, इतने सीधे साधे हैं बेचारे, कोई लंद फंद नहीं आता, तो इनका सम्मान उनकी तुलना में ज्यादा क्यों नहीं है? इनका सम्मान तो ज्यादा होना चाहिए, जबकि लाल साहब जी के बारे में कभी कभी उल्टी बातें भी सुनने में आती थी, क्योंकि वो लोगों को कर्ज भी दिया करते थे। तो फिर कर्ज के वसूल करने के लिए वो दो व्यक्ति रखे हुए थे, है ना, जो पुलिस की ड्रेस में जाते थे हाथ में डंडा लेकर के और कर्ज वसूल करके लाते थे। तो लोगों से मारपीट भी हो जाती थी, लोगों को धमकाते भी थे, तो उसकी लोग आलोचना करते थे, उसकी वजह से लोग डरते भी थे। तो मुझे लगा कि हमारे दादाजी तो ऐसा करते नहीं है, तो सम्मान तो हमारे दादाजी का ज्यादा होना चाहिए, तो ये उल्टा क्यों हो रहा है? दोस्तों, जब आप इस पर सोचेंगे तो आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखिए, आप उस समय की बात कीजिए जब आप 7-8-9 साल के हैं, है ना, 10 साल के हैं, उम्र आपकी बहुत कम है, आप चीजों को बहुत यथार्थवादी तरीके से नहीं देख रहे हैं, बस परिवेश को देख रहे हैं, सीन आपके आंखों के सामने चल रहा है, बस आप देखते चले जा रहे हैं और उसमें से कुछ दृश्य आपके अंदर घुसते चले जा रहे हैं, तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूं। अदरवाइज तो घटनाएं तो पता नहीं कितनी घटी होंगी। और यह भी मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने जब आप लोगों ने इस तरह का प्रश्न किया तो मैंने इसका बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। अब विश्लेषण करने के बाद मैं किन चीजों को याद कर पा रहा हूं, आप देखिए, उन चीजों को याद कर पा रहा हूं जो कहीं ना कहीं मेरी अपनी प्रेरणा से जुड़े हुए हैं। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो तो याद नहीं आ रही है। मित्रों, इसी बात को समझने की जरूरत है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दादाजी होना तो ठीक है, आप अच्छा व्यवहार रखिए, मित्रवत व्यवहार रखिए, दयालु कृपालु होइए, लेकिन अगर आपको बड़े स्तर का सम्मान चाहिए तो आपके पास अधिकार होने चाहिए, बिना अधिकार के तो बात नहीं बनेगी। तो दोस्तों, ये सेकेंड पॉइंट हुआ। ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, मैं कुछ अलग अलग तरह के जो पॉइंट्स हैं केवल वो आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, मेरे दादाजी के ठीक बड़े भाई थे, मेरे दादाजी से ठीक बड़े, जो हमारा गांव चंद्रमेढ़ा है उससे एक थोड़ी सी दूरी पर, लगभग 12-13 किलोमीटर पर एक तहसील प्लेस है सूरजपुर, अब वो जिला बन गया है। सरगुजा जिले या छत्तीसगढ़ के जो विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी सुन रहे होंगे, जानबूझ करके मैं नाम बता रहा हूं ताकि उन चीजों को दृश्य, उस स्थान का दृश्य उनके आंखों के सामने आ जाए। तो वहां मेरे दादाजी रहा करते थे, उनका नाम था तेलुराम गोयल, तेलुराम। तो दादाजी से जब कभी बातचीत होती थी तो वो एक बात बार बार दोहराया करते थे और उसे वो अपने आप कह लीजिए कि बड़ी उपलब्धियों में मानते थे। वो बताया करते थे कि एक बार एक तहसीलदार या नायब तहसीलदार, कुछ ऐसे ही करते थे लेकिन तहसीलदार शब्द उसमें जरूर था, घोड़े पर आया। वो जहां रहते थे वहां घोड़े पर आया। तो देखिए, गांव में उस समय रहने के लिए उस तरह की जगह नहीं हुआ करती थी, तो वो उनके यहां रुके। जब वो उनके यहां रुके तो मेरे दादाजी कहते थे कि मैंने उनके घोड़े को खूब चने खिलाए, खूब चने खिलाए, खूब घोड़े की सेवा की, उसको तेल वगैरह भी लगाया और उससे तहसीलदार एकदम खुश हो गया, एकदम खुश हो गया। और इसको मेरे दादाजी बड़े गर्व के साथ बताते थे। दादाजी यानी कि मेरे दादाजी के ठीक बड़े भाई, तो मैं उन्हें दादाजी ही कहूंगा, तो बड़े गर्व के साथ बताते थे। दोस्तों, मैं सुनता था लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आती थी और वो एक बात ये आती थी कि दादाजी तहसीलदार के घोड़े की सेवा करने से इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मुझे क्या बनना चाहिए? तहसीलदार बनना चाहिए, क्योंकि वो घोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो घोड़ा किसका है। तो जिस तहसीलदार के घोड़े की इतनी बड़ी इज्जत हो तो यार उस तहसीलदार की कितनी बड़ी इज्जत होती होगी। अब आप देखिए कि डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन सम्मान का हो रहा है, डायरेक्शन अधिकार का हो रहा है, डायरेक्शन प्रतिष्ठा की हो रही है, डायरेक्शन पहचान बनाने की हो रही है। देख रहे हैं ना आप कि वो बाल चेतना है वो किधर से चीजों को लेकर के जा रहा है। तो सच पूछिए तो फिर मैंने ये कहा कि मनी मन में सोचता था कि यार घोड़े का सेवा शुश्रूषा करने से कौन सी बड़ी बात होगी, फिर तो अगर बनना चाहिए तो तहसीलदार बनना चाहिए। अब उस समय नहीं मालूम था कि तहसीलदार क्या होता है या नायब तहसीलदार, कुछ नहीं मालूम था, लेकिन यह है कि बनना वो चाहिए जिसके घोड़े का इतना सम्मान होता हो। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ आपके सामने और उदाहरण रखे हैं और मेरी समझ से यदि आप इन उदाहरणों पर थोड़ी गंभीरता से विचार करेंगे तो आपके अपने जीवन में भी ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे। तो मित्रों, आज के इस अब लाइफ मैनेजमेंट को मुझे यहीं समाप्त करने की आप सब इजाजत दें। नमस्कार।